आहान के मुंह से ये बात सुनकर रौनक भी परेशान हो गई। लेकिन ये सब कहते कहते आहान का हाथ कब रौनक की गर्दन पर चला गया और उसके हाथ उसकी नंगी पीठ पर घूमने लगे, उसे एहसास ही नहीं हुआ। अब ये महसूस करते ही रौनक ने भी शर्माकर अपनी आंखें बंद कर ली। अब आगे, वहीं दूसरी ओर वंशिका, जो ध्रुव द्वारा दी गई नाइट ड्रेस ट्राई कर रही थी, जैसे ही उसने वो ड्रेस पहनी और खुद को आईने में देखा, तभी अचानक दरवाज़ा खुला और ध्रुव अंदर आ गया। ध्रुव को वहां देखते ही वंशिका एक पल के लिए ठिठक गई और एकदम से हैरान हो गई थी। ध्रुव को पहले से पता था कि उसकी बीवी किस चेंजिंग रूम में गई हैं, इसीलिए वो हड़बड़ी में वहीं चेंजिंग रूम में घुस आया था। वंशिका को नाइट्रेस में देखकर ध्रुव की हालत बिगड़ने लगी। ध्रुव जो कुछ देर पहले अरमान से डरकर घबरा रहा था, वहीं वंशिका को देखकर उसने तुरंत आगे बढ़ते हुए वंशिका को गले से लगा लिया। वंशिका आश्चर्य से ध्रुव को देखती रही। वो उसे कई सवाल करना चाहती थी, लेकिन अचानक ध्रुव ने उसके खूबसूरत नरम होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया और उसे चूमने लगा। वंशिका की आंखें कब मदहोशी से बंद हो गईं, उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर राधिका लगभग साड़ी पहन चुकी थी और जैसे ही वो बाहर निकलने वाली थी, तभी सुमित ने उसे उसकी कमर से पकड़कर अंदर की ओर खींच लिया और उसे गले से लगा लिया। अब ये महसूस करते ही राधिका तो एकदम से दंग रह गई। उसके चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट नजर आई, फिर अगले ही पल वो खुद को छुड़ाते हुए कहने लगी, ये क्या कर रहे हो तुम, और तुम इस तरह से अंदर कैसे आ गए? मैं तो बाहर ही आ रही थी, साड़ी भी पहन चुकी हूँ, चलो बाहर चलते हैं। तभी सुमित नामे सिर हिलाया। सुमित धीमी आवाज में राधिका को समझाते हुए, नहीं राधिका, अभी हम बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अरमान यहाँ आ चुका है। पता नहीं वो यहाँ क्यों आया है। अगर हम उसके सामने बाहर निकल गए तो उसे हम पर शक हो जाएगा, और हम अरमान को शक करने का एक भी मौका नहीं देना चाहते, वरना वो कैसे रिएक्ट करेगा ये हमें भी नहीं पता। इस बात पर राधिका का चेहरा थोड़ा शांत हुआ, इसलिए वो बात बदलते हुए बोली, लेकिन हम कब तक इस चेंजिंग रूम में रहेंगे? मुझे लगता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए, ताकि हम अरमान की नज़र में आए बिना यहाँ से बाहर चले जाएं। ये बोलकर राधिका ने चेंजिंग रूम से आगे की ओर कदम बढ़ा दिए, लेकिन तुरंत ही सुमित ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और मदहोशी भरी आवाज में बोला, क्या हो गया? अगर अरमान बाहर है तो जब तक वो यहाँ रहेगा तब तक हम दोनों भी यहीं रहेंगे और साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। उसका जवाब सुनकर राधिका थोड़ी हैरान हुई और उसे अजीब नज़रों से देखने लगी। दरअसल उसका इरादा सुमित के साथ प्यार जताने का नहीं था, क्योंकि वो सुमित से काफी नाराज थी, लेकिन अचानक उसकी नज़दीकी बढ़ने पर वो अपनी नाराजगी भी भूल गई। सुमित ने कब उसके पतले जिस्म को अपने आगोश में ले लिया और उसके जिस्म पर टूट पड़ा, उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर आस्था जल्दी ही साड़ी पहनकर बाहर आ चुकी थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे अरमान कहीं दिखाई नहीं दिया। आस्था ने जानबूझकर अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा कमर से हटाकर ढीला छोड़ा था और ब्लाउज भी थोड़ा छोटा पहना था, ताकि उसकी कमर और ज्यादा नजर आए, क्योंकि आस्था अच्छी तरह जानती थी कि उसकी कमर अरमान सिंघानिया की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब भी अरमान उसकी कमर देखता था, उसके दिल दिमाग में हलचल मच जाती थी। इसी वजह से आस्था ने आज अपनी कमर खुली छोड़ी थी, ताकि अरमान खुद को रोक ना पाए और उसके करीब आ जाए। लेकिन आस्था ने जब अरमान को ढूंढा तो वो उसे वहां कहीं नहीं मिला जहां वो उसे छोड़कर आई थी। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि अरमान आराम से लैपटॉप पर काम कर रहा था। ये देखते ही आस्था ने अपने माथे पर हल्की चपत लगाई और अरमान को नाराजगी से घूरते हुए उसने अपने मन में सोचा, अगर इनकी याददाश्त नहीं गई होती तो हम अभी इन्हें अपनी क्वीन को इग्नोर करने की सजा जरूर देते। फिर वो जैसे तैसे अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए सीधा अरमान के सामने जाकर बेपरवाही से खड़ी हो गई। अरमान को जैसे ही किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, उसने अपनी नजरें उठाईं और वैसे ही उसकी नज़र तुरंत आस्था की खुली हुई कमर पर जाकर ठहर गई। अचानक अरमान का दिल जोरों से धड़कने लगा। अभी तक वो अपने काम में डूबा हुआ था, लेकिन आस्था को इस तरह अचानक अपने सामने देखकर वो एकदम हक्का बक्का रह गया। वो आस्था का चेहरा देखना चाहता था, लेकिन उसकी नज़रें उसकी कमर पर ही अटक गई थीं। वहीं आस्था को अरमान की ये हालत देखकर कहीं ना कहीं बहुत मजा आ रहा था। उसने जल्दी से अनजान बनकर मुस्कुराते हुए अरमान से पूछा, मिस्टर सिंघानिया, मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। देखिए, मैंने बहुत सारी साड़ियाँ देखी, लेकिन मुझे यही साड़ी थोड़ी बहुत अच्छी लगी तो मैंने इसे ही पहन ली। आप बताइए ना, ये साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है, क्या मैं इसे पैक करवा लूँ? ये कहते कहते आस्था अचानक जानबूझकर अपनी साड़ी को ठीक करने का नाटक करने लगी और अरमान का ध्यान अपनी कमर की ओर खींचने लगी। अरमान अब एकदम से खामोश होकर बस उसकी कमर की ओर एकटक देखता रह गया, लेकिन आस्था पूरी तरह से उसको इरिटेट कर रही थी। फिलहाल अरमान अब तुरंत खड़ा हुआ, उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया, क्योंकि अरमान के हार्मोनियल सिस्टम में काफ़ी बदलाव आ चुके थे। वैसे उसे उस वक्त रेस्टरूम जाने की काफ़ी ज़रूरत थी, इसीलिए उसने एक नज़र आस्था की ओर देखा और उसे घूरता हुआ सीधा वॉशरूम में चला गया। वहीं अरमान के वहां से जाने के बाद आस्था खिलखिलाकर हंस पड़ी, क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि अरमान सिंघानिया पूरी तरह से उसकी ओर आकर्षित हो। वो समझ चुकी थी कि इस वक्त अरमान का शरीर किस तरह से आग की भट्टी की तरह तप रहा होगा और उसे उसकी कितनी जरूरत होगी। लेकिन आस्था जानबूझकर अरमान को परेशान कर रही थी ताकि वो उससे कल रात का बदला ले सके। अरमान के जाने के बाद आस्था ने जल्दी से चेंज किया और वापस आकर कई सारी ड्रेसेस चुनने लगी। वहीं दूसरी ओर उन सभी कपल्स को चेंजिंग रूम में गए लगभग 15 में 20 मिनट हो चुके थे। इन 20 मिनटों में उन्होंने पूरी तरह से अपने इस अवसर का लाभ उठाया और अपनी अपनी पार्टनर को प्यार में मदहोश कर दिया। चेंजिंग रूम में ही वे एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगे। ये प्यार उन्हें कई दिनों के बाद करने को मिला था। वहीं आहान और रौनक बहुत केयरफुल होकर अपने बच्चों का ख्याल रखते हुए भी एक दूसरे को पूरा प्यार दे रहे थे। तभी रौनक आहान की मदहोशी से थोड़ी बाहर आई और झिझकते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? हमें घर चलना चाहिए। मैं इस तरह से ज्यादा देर तक चेंजिंग रूम में नहीं रह सकती, वरना मुझे घबराहट होने लगेगी। रौनक की आवाज में हल्की घबराहट सुनकर आहान भी होश में आया और वो उसे छेड़ते हुए बोला, तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं क्या करूं, तुम इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। ये बोलकर वो फिर से नॉटी होने लगा, लेकिन तभी रौनक ने उसे खुद से अलग किया, अपने कपड़े पहने और हल्की नाराजगी से बोली, चुपचाप खड़े हो जाओ, मैं फटाफट आस्था को फोन करती हूँ और उससे कहती हूँ कि वो कोई रास्ता निकाले। इतना बोलते ही रौनक ने आस्था को कॉल करना शुरू कर दिया। उधर आस्था शॉपिंग करने में पूरी तरह से बिजी थी। वो ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी, साथ ही उसने एक कुर्ता पजामा भी देखा जो उसे बेहद प्यारा लगा। उसने सोचा, ये तो मेरे पति के लिए ही बना है। हालांकि मिस्टर अरमान सिंघानिया को कुर्ता पजामा पहनाना आसान नहीं था, क्योंकि उन्होंने त्योहार मनाने से भी साफ मना कर दिया था, लेकिन आस्था का दिल नहीं माना और उसने वो कुर्ता पजामा अपने पति अरमान के लिए खरीद लिया। उसी वक्त अरमान वॉशरूम में खुद पर इरिटेट हो रहा था, क्योंकि आज से पहले उसकी ऐसी हालत कभी नहीं हुई थी। उसका शरीर काफी हार्ड हो चुका था और वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड था।
उसे बुरा लग रहा था कि ये सब उसे क्यों हो रहा है। उसने परेशान मन से सोचा, आज तक एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां खुद को मेरे सामने परोसती रही है। बड़ी बड़ी मॉडल्स और इंडस्ट्रियल की सीईओ तक मेरे सामने तैयार रहती थीं, लेकिन आज सिर्फ एक लड़की की कमर देखने भर से मेरी हालत बिगड़ गई। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अरमान लगातार खुद को शांत करने की कोशिश करता रहा और करीब 15 मिनट बाद जैसे तैसे वो नॉर्मल हुआ। फिर बाहर आते ही उसने मन ही मन फैसला किया कि वो अब उस लड़की की ओर देखेगा तक नहीं। जब अरमान ने आस्था को देखा तब तक उसने अपना सूट वापस पहन लिया था। तब जाकर उसने राहत की सांस ली। फिर अरमान उसके पास आते ही उसे घूरते हुए डांटने लगा, क्या तुम्हारी शॉपिंग का कोई अंत नहीं है? मैं तुम जैसी चिप लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हें बस एक मौका चाहिए फ्री में शॉपिंग करने का, तो क्या तुम मेरा पैसा दिल खोल कर उड़ाओगी? वैसे भी पैसे तो तुम्हें देने नहीं है। आस्था अरमान की बात सुनकर एकदम चुप रही, लेकिन वो अरमान को इग्नोर करते हुए कुर्ता पजामे को गौर से देखती रही। उसे इमेजिन हो रहा था कि जब अरमान अपने सिक्स पैक एब्स और लोहे जैसे शरीर के साथ ये पहनेगा तो कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। आस्था अचानक अपने ख्यालों में खोई हुई बोली, देखिए ना, ये कुर्ता पजामा कितना अच्छा है, ये मेरे पति पर कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। आस्था के शब्द सुनकर अरमान को अपने दिल में अजीब सी जलन महसूस होने लगी। जिस तरह से आस्था प्यार से उस कुर्ते पजामे को निहार रही थी और कह रही थी कि ये उसके पति पर कितना अच्छा लगेगा, तो इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं अरमान के मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी, इसलिए उसने गुस्से में आस्था को टोका। अरमान आवाज ऊंची करते हुए, फटाफट बाहर कार में आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने बिलिंग काउंटर पर कह दिया है, तुम अपने सामान वहीं से ले लेना, और हाँ, जल्दी आ जाना। आस्था को इतना बोलकर अरमान वहां से सीधा कार में जाकर बैठ गया और खुद को कोसने लगा, आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मैं ऐसी हरकत कैसे कर सकता हूँ? ये सब नहीं होना चाहिए था। तभी आस्था का फोन बजा। उसने देखा कि कॉल रौनक का था। आस्था ने फोन उठाकर तुरंत कहा, रौनक तुम ठीक हो ना? तुम हॉस्पिटल गई थी तो डॉक्टर ने क्या कहा? सब ठीक है ना? आस्था के सवालों को सुनकर रौनक ने उसे टोका। रौनक आस्था को शांत कराते हुए, आस्था मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम ये बताओ कि क्या तुम अरमान भाई को लेकर सिंघानिया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आई हो? तुम जानती हो हम सब भी यहीं पर हैं और फंस गए हैं। हम सब अपने अपने पार्टनर के साथ चेंजिंग रूम में छुपे हुए हैं। प्लीज तुम जल्दी से कुछ करो और भाई को लेकर यहाँ से चली जाओ, हम सब चेंजिंग रूम में ज्यादा देर नहीं रह सकते। रौनक हमेशा की तरह बिना रुके फटाफट से बोलने लगी और उसने सब कुछ एक साथ कह डाला। रौनक के मुंह से ये बात सुनकर आस्था एकदम से हैरान हो गई। उसने तुरंत कहा, ओ शिट, आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैं अभी उन्हें लेकर जा रही हूँ, मैं अभी निकलती हूँ। इतना कहने के बाद आस्था ने फटाफट अपना सामान समेटा और वहां से बाहर निकल गई। और वहां से बाहर जाने के बाद उसने रौनक को फटाफट से एक मैसेज छोड़ दिया था। आस्था का मैसेज मिलते ही रौनक ने अगले ही पल गहरी सांस ली और वो आहान को देखते हुए बिल्कुल आराम से बोली, वो चले गए,
चलो हम भी यहां से बाहर निकलते हैं। तभी आहान एक बार फिर नॉटी होते हुए बोला, सोच लो, क्या तुम यहां से बाहर जाना चाहती हो? तुम चाहो तो एक राउंड और लगा सकती हो। ये शब्द सुनकर रौनक के गाल अगले ही पल टमाटर की तरह लाल हो गए। उसने तुरंत आहान के पेट में हल्का सा मुक्का मारा और फटाफट से दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। बाहर आकर फिर वो गहरी और लंबी सांसें लेने लगी। फिलहाल अब वो दोनों एक दूसरे की ओर शरारत से देख रहे थे, क्योंकि जिस तरह से रौनक ने आहान को किस किया था, आहान ने भी रौनक को इस तरह किस किया था कि उनके ऊपर काफी सारे लव मार्क्स और लव बाइट्स बन चुके थे। वे लोग यहां से बाहर निकलने में देरी नहीं करना चाहते थे। फटाफट से उन दोनों ने सोचा कि इससे पहले कि ध्रुव, आकाश या सुमित भैया उन्हें बाहर इस हालत में देख लें, उन्हें तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि आहान और रौनक वहां से बाहर निकल पाते, ठीक उसी वक्त ध्रुव वंशिका के साथ, आकाश रश्मि के साथ और साथ ही सुमित और राधिका भी अपने अपने चेंजिंग रूम से बाहर निकल आए थे। अब जैसे ही वे सब एकदम से बाहर आए तो उन सबकी नजर एक दूसरे के हुलिये पर पड़ी तो सब एकदम से ठिटक गए और फटी हुई आंखों से एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे, क्योंकि उन सभी कपल्स के चेहरे और उनके कपड़े चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे थे कि चेंजिंग रूम में इतनी देर से आखिर हो क्या रहा था। अब ये सब देखते ही सब एक दूसरे के सामने शर्मिंदा से हो गए थे और सभी इधर उधर नजरें बचाते हुए फटाफट से वहां से बिजली जैसी तेजी से भाग गए थे, क्योंकि इस वक्त कोई भी किसी को फेस नहीं करना चाहता था, इसलिए फटाफट से वो सबके सब वहां से निकल चुके थे। लेकिन आहान रौनक को संभालते हुए वहां से आराम से ले जा रहा था।